फिर आगे ईमान के वज़न की बात है, मुसलमानों के ईमान का वज़न होता है, आयत 65 से 66 है, या युहन्नबी युहर्रिदिल मोमिनीन अलल किताल, ए नबी मोमिनों को किताल पे रग़बत दिलाइए। अब ये आयत है कुरान की, जाइए किसी से भी इसका तर्जमा करा लें। अच्छा, मुसलमान लफ्ज़ किताल, जंग, जिहाद दे के फ़ौरन डिफेंसिव हो जाते हैं, हाय हाय नहीं नबी ने जंगे की, नहीं नहीं वो जंगे नहीं थी, क्यों नहीं, भाई कैसे हो सकता है। देखिए अगर आप पूरी सीरत पढ़े ना, 13 साल तो कुफ्फ अइदियकुम, उसमें टीम बिल्डिंग हुई, सहाबा को सब्र सिखाया गया, परसिक्वेशन के ख़िलाफ़ बस अपने ईमान और तकवा को बढ़ाओ, फिर आखिर हिजरत सिखाई गई। आज भी ये स्टेप होंगे कि उस जगह को छोड़ दो, नहीं ये मान रहे छोड़ दो, इनको रहने दो, इनके हाल पे तुम निकल जाओ इधर से, उस पे भी वो ना चैन पाए, और जब वो मैदान जंग में आ गए ललकारने लगे तो मुसलमान बुज़दिल बन जाए। आपके घर में लाल बेग और कॉकरोच आ जाते हैं तो आप उसके साथ किताल करते हैं? छोड़ दीजिए बेचारे कॉकरोच फिरते रहें, चलो कोई बात नहीं, ये घर में हैं बेचारे अल्लाह के बंदे हैं और ये चींटियाँ पड़ी रहें। आप एक कॉकरोच को जो ज़बरदस्ती आपके घर में आता है नहीं छोड़ते, तो वो जो आपको कत्ल करने आ रहा है, क्या मुसलमान बुद्धू होते हैं, बेवकूफ़ है? हाँ पहल नहीं करनी जब तक कि वो समझ नहीं जाते, तुमने उनको समझाते की कोशिश करते रहना, तो इधर क्या पता चला कि मुसलमान के पास दूसरे असबाब तो कम होंगे लेकिन ईमान के साथ वजन है। ये वो आयत है जिसने आज के और सहाबा के ईमान को कह लीजिए कि रिलेट कर दिया, इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून, अगर तुम्हारे अंदर 20 सब्र करने वाले, साबिरून से मुराद आमिलून, दीन पे अमल करने वाले मौजूद हैं, यग़लिबू मियतैन, तो वो 200 पे गालिब होंगे, क्या रेशो बना 1:10, यानी ये एक मोमिन 10 कुफार पे भारी है, और इस पे रूल्स हैं, मैदान जंग में एक के मुकाबले में 10 काफिर भी हों फिर भी वो पुश नहीं फेर सकता, वरना कबीरा गुना होगा। लेकिन अब क्या हो गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं वहीं यकुम मिन को मियाँ तो यगलिबू अल्फ मिन अल्लज़ीना कफरू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। ये तो थे सहाबा के ईमान, शुरू दौर में ईमान ज़्यादा था, एक के मुकाबले में 10 का रेशो, पहले 20 और 200 और फिर 1000 और इसके साथ 100 की मिसाल से दिया, लेकिन आगे अलआन खफ्फफल्लाहु अन्कुम, अब अल्लाह ने तख़फीफ़ कर दी, रियायत दे दी, सहूलत दे दी, रिडक्शन दे दी, वालिमन नफीकुम दाफा, वो जान गया तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है। वक्त के साथ मुसलमानों का ईमान कम हुआ, जैसे शम्मा से दूरी पे रोशनी कम होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप एक शम्मा-ए हिदायत थे। और याद रखिए किसी भी दौर में जो लीडर होता है ना वो एक मैग्नेट होता है, उसकी वजह से इर्द गिर्द से बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं, ज्यों ही वो मैग्नेट निकलता है हर एक अपनी असल पे आ जाता है। और आपने साइंस का असूल पढ़ा होगा कि थोड़ी देर लोहा मैग्नेट के साथ रखा जाए तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। एक मेंटोर, एक उस्ताद, एक लीडर जितना ज़्यादा एनर्जेटिक और फुल पावर्ड होता है ना, उसके इर्द गिर्द वाले भी उतने स्ट्रांग हो जाते हैं। आप कभी फील करते होंगे कि किसी इंसान की मौजूदगी में आप कितनी भी नेकी कर ले आप थकते ही नहीं, क्योंकि आप मैग्नेट बने हुए हैं, आपको एनर्जी मिल रही है। असल आपका पता कब चलेगा, जब वो मैग्नेट बीच में से निकलेगा। सहाबा की खूबी ये थी कि अल्लाह के नबी जैसा मैग्नेट चला भी गया लेकिन आपने मिशन नहीं छोड़ा। और अल्लाह के नबी की जो कामयाबी है ना, उसमें असल ये बात है कि आपको साथी बड़े अच्छे मिले थे। आप देखेंगे जिस भी लीडर को साथी अच्छे मिल जाए वो ऊपर चढ़ जाता है, सियासत में भी ऐसे ही होता है। यहाँ तो दीन की बातें, हर दौर के नबियों को साथी मिले लेकिन दीन नाफिज नहीं हुआ, इसका निफाज यानी इम्प्लीमेंटेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए की हुई कि आप अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसे बाद में हजारों नहीं लाखों साथी मिले, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कहने वालों ने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के इतने फॉलोअर्स क्यों हैं, तो जवाब दिया गया कि उनको शागिर्द अच्छे मिले, अल्लाह ने उनको बहुत अच्छे शागिर्द दिए जिन्होंने उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ाया। बीइंग अ पेरेंट हम क्या चाहते हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे हमारे बिजनेस की बड़ी अच्छी टेक केयर करें, बेटा बाप की जिंदगी में कारोबार सीख जाए, दुकान पे बैठ जाए, ये हो जाए वो जाए, करते हैं ना। माँ क्या चाहती है, अब तो वैसे माँ नहीं मेरा ख्याल चाहती, या चाहें भी तो बहुत ही कम होता है कि मेरी जिंदगी में बेटी घर चलाना सीख जाए, मेरी बहू मेरी जगह पे अपनी जगह बना ले क्योंकि मैं कमज़ोर हो रही हूँ। फितरी बात है, इंसान वीक होता है वक्त के साथ साथ। यहाँ अल्लाह ताला ने ये बात करके क्या बता दिया, कामयाब वो है जो अपने होते हुए ना होने को साबित करते हैं। हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि हम जाएं तो हमारे बच्चे खड़े हों, हम जाएं तो हमारे शागिर्द खड़े हों? नहीं, अक्लमंदी ये है कि अपनी ज़िंदगी में अपने साथी तैयार करते जाएं, ये सुन्नत थी। अपने साथ एक और कुर्सी लगाकर दूसरा टीचर साथ तैयार कर दें, उसकी गलतियां नोट कीजिए, उसको तरीका बताइए, लोगों के सामने प्रोजेक्ट्स रख दीजिए और उनको पूरी तरह पीछे से सपोर्ट दीजिए ताकि उनको खड़ा होना आ जाए। वो कहते हैं ना कि बाप की ज़िंदगी में गलती कर लो, पीछे बाप है, अगर वो चला गया तो लोग तो हंसेंगे। तो यहाँ ये सारी बात का खुलासा क्या है कि वक्त के साथ जब ईमान कमज़ोर हुआ, कम हुआ, क्योंकि अल्लाह ने जान लिया कि तुम्हारे अंदर ज़ोफ़ है, अब रेशो ज़रा कम कर दिया, बल्कि बहुत ही डाउन किया। फ़ैयकुम मिनकुम मियातुन साबिरतुन, अगर तुम्हारे अंदर 100 सब्र करने वाले होंगे, यग़लिबू मियातैन, क्या ग्राफ रह गया? 1:2। अल्लाह फ़ैयकुम मिनकुम मिया अल्फुन यग़लिबू अल्फैन बिस्मिल्लाह वल्लाहुमा साबिरीन। क्या अल्लाह को बंदे का पता है? यानी अब रूल बन गया कि एक मुसलमान के आगे दो काफिर हैं तो वो खड़ा रहेगा, तीन आगे ना तो अब उसके पास है इस बात की ऑप्शन या एक उजर कि अगर मैदान जंग से पलटता है तो पलट आए, कि नहीं जी ये तो अचीवेबल टारगेट नहीं। और आप हजरत खालिद बिन वलीद के हालात तो पढ़िए, जंगे यरमूक और जंगे मौता और इस तरह के हालात ना समझ आने वाले फिगर्स एंड फैक्ट्स थे। 2-2 लाख कुफार के मुकाबले में 100-200 मुसलमानों के साथ लड़ने निकल जाते थे, क्योंकि उनका अपना ईमान अकेला ही वो एक अहले के फर्नस था। तो बहरहाल आपके मेरे हौसले और ईमान पे हमारा वजन है। आज उम्मत मुस्लिमा का ईमान कितना है? शायद आज 2 बिलियन मुसलमानों का ईमान एक पलड़े में डाला जाए तो सहाबा में से किसी एक के ईमान के बराबर भी ना हो। ये थे वो रदी अल्लाह अनहु व रदू अन। अल्लाह ताला हमें भी ईमान में बढ़ाए। हम हर चीज़ बढ़ाना चाहते हैं, घर बड़ा हो, कारोबार अच्छा हो, पैसे बढ़ जाएं, 1, 2, 3। अल्लाह कहते हैं ईमान बढ़ाओ, असल सोर्स तो नेमतों का ऊपर है। तुम्हें दुनिया की दौलत ज़्यादा भी मिल गई, डबल भी तुम्हारे पैसे हो गए, तो बरकत तो अल्लाह ने देनी है। इसलिए फिर अब आगे आयत 67 से 71 में एक असूल दिया गया कि मुसलमान माल के लिए नहीं लड़ता। शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। इसमें असल में बदर के कैदियों का एक किस्सा। देखिए बदर की जंग चूंकि फर्स्ट जंग थी ना, तो उसमें बहुत ट्रायल एंड एरर्स हो रहे थे। उसमें से एक ये हुआ, जब जंग ख़त्म हुई तो मुसलमानों के पास 70 लोग कैदी बन के आ गए, या 70 लोगों को कैदी बना के पेश किया गया। और माले गनीमत की बांट पे तो बात शुरू से चली रही है, अब पता नहीं है कि इन कैदियों के साथ क्या किया जाए। अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या थी कि जब तक कोई हुक्म नहीं नाजिल होता था पहले से, तो जो पिछले अम्बिया की शरीयत है उस पर अमल करते थे। अब मैदान जंग से जो कैदी आए उनके साथ क्या किया जाए? आपने क्या किया उनके बारे में? मशवरा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी, इस्लाम कमज़ोर है, उसको माल की ज़रूरत है, हम ऐसा करते हैं कि इनका फ़दिया ले लेते हैं जो उस वक़्त भी था रैनसम के तौर पे, और वो माल इस्लाम की नशरोशात में काम आएगा। अल्लाह के नबी को भी ये राय पसंद आई, क्योंकि बुनियादी तौर पे आप भी रकीकुल कल्ब थे। हज़रत उमर फारूक और साद बिन माज, इन दोनों की राय क्या थी कि अल्लाह के नबी कैसी बात है, ये तो आपको ख़त्म करने आए थे, ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ ग्रज लेकर आए, आप हमें दीजिए, अपने अपने रिश्तेदार को हम अपने हाथ से कत्ल कर दें। अल्लाह के नबी ने इज्तिहादी मसला था, अबू बकर की राय को ले लिया और फिदिये पे बात कर दी। बच्चों को पढ़ाने की बात हुई, किसी का कुछ हुआ, बहुत लंबा खूबसूरत टॉपिक है ये। उतने में ये आयत उतर गई और उमर फारूक कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास आया तो देखा कि आप रो रहे हैं, साथ देखा तो अबू बकर भी रो रहे हैं। कहते मैंने वजह नहीं पूछी, मैंने भी रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मोमिनों का दुख सुख साझा होता है। बाद में पता चला कि हज़रत उमर वाली राय दुरुस्त थी, लेकिन अल्लाह ने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, क्योंकि आज भी इज्तिहाद करने वाला अगर मसले को पहुंच जाए तो 2 अजर मिलते हैं, और अगर मसला ना भी समझ सके तो 1 अजर तो मिलता है। मसलन आप किसी भी जगह सफ़र में थे, नमाज अदा करनी है, अब किबला किधर है, आप पूरी कोशिश करते हैं, चांद को देखते हैं, हवा को देखते हैं, पानी को देखते हैं, और आज के तो गैजेट भी हैं। आप कहते हैं इधर मुँह करेंगे तो किबला जी, इधर नमाज आप पढ़ लेते हैं। बाद में पता चला कि ठीक तरफ पढ़ी तो आपको 2 अजर मिलेंगे, पता चला गलत तरफ पढ़ के आप चले गए थे, 1 अजर फिर भी मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं इसमें। मा कान लिन नबी यकून असरा, हत्ता युस्खिना फिल अर्दी, अल्लाह कहते हैं जब भी कोई कैदी आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि उनसे रैंसम लिया जाए, खून रेजी होगी ज़मीन में, तुरी तू नारद दुनिया, क्या तुमने दुनिया का माल लिया, मुराद एक उनसे माल गनीमत लिया, वल्लाहु युरीदुल आखिरा, और अल्लाह ताला तो आखरत का इरादा फरमाते हैं। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि अगर अल्लाह की तरफ से ये बात पहले से ना लिख गई होती, अलबत्ता लग जाता तुमको इस पर बहुत बड़ा अज़ाब, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप जो इनसे ले लिया रैंसम, फ़कुलु मिम्मा गनीमतुम हलालन तय्यिबा, आप उस माल गनीमत को जो तुम ले चुके हो खा लो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और साथ ही आगे हिकमत भी अल्लाह ने बता दिया आयत 70 में, या अय्युहन नबी, ए नबी कह दीजिए वो लोग जो आपके हाथ में कैदी बन कर आए हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इसमें कहते हैं कि ये मेरी बातें हो रही हैं, क्योंकि आप देखिए नबी के सगे चचा बदर के कैदी बनाकर भेजे गए, क्योंकि अभी इस्लाम नहीं आया हुआ था। कहा जरा इन कैदियों को एक पैगाम दीजिए, यालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में खैर देखेगा, युतिकुम खैरम मिम्मा उखिज़ा मिनकुम, तुम्हें उससे ज़्यादा देगा जो तुमसे लिया। कहते थे कि जो माल मैंने अपनी रहाई के लिए दिया था ना, अब इस्लाम के बाद मुझे उससे कई गुना ज़्यादा मिल चुका है। ये अल्लाह की सुन्नत, पहले अल्लाह आपके हाथ खाली कराता है, और जब आपके पास देने को कुछ भी नहीं बचता तो अल्लाह अपने ख़जाने आप पे लुटाना शुरू कर देता है, और जितना बचा के छुपा के रखे होते हैं ना, अल्लाह कहता है ज़रा फरिश्तों इसको और लटकाओ। इस बात का यकीन बंदे को अपने घर के पूरे ख़जाने, क्या घर का एक एक तिनका लाकर मैदान तबूक में डालने पे माइल कर देता है। साहबा को ये यकीन था, हमें यकीन नहीं, हमें बैंकों पे यकीन है, हमें कई नामी स्कीमों पे यकीन होगा, अल्लाह के बारे में हम कहते हैं ये कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात है वो यग़फ़िर लकुम, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। हाँ, अब ये कैदी जब आए तो ये ख़तरा था कि ये मुसलमानों को मदीना में नुकसान ना दें, और ऐसा हुआ भी कुछ जगह, एक सारा नाम की एक लॉन्डी थी वो स्पाई बन गई, आई थी इसी मौके पे, लेकिन बाद में वो इधर की खबरें उधर देती थी, तो कहा कि इन कैदियों को अपने अपने बच्चे बढ़ाने पे लगा दिया। देखिए मुसलमानों के मदीना में पहले उस्ताद गैर मुस्लिम थे, आज आप कहते हैं नॉन मुस्लिम स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे तो बिगड़ जाएंगे, और ख़ासतौर पर बाहर के मुल्कों में, अगर माँ बाप का ईमान और इस्लाम सहाबा जैसा होगा तो आपके बच्चे और नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान करके आएंगे, और वाइस वर्सा जो हो रहा है वो अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह कहते हैं वहीं यूरीद खयानत तक, और अगर ये आपकी खयानत करेंगे, कोई बात नहीं है, तो इससे पहले अल्लाह की खयानत कर चुके यानी शिर्क किया, और फिर उसके बाद जो भी हुआ अल्लाह ने इनको जगह दी इनमें। मुराद क्या है कि तुम इन पे जो भी ट्रस्ट कर सकते हो कर लो, और अगर फिर भी इन्होंने इधर उधर किया मामला तो अल्लाह जानता है, क्योंकि वो जानने वाला और हिकमत वाला है। फिर इसके बाद आगे आयत नंबर 72 से 75 में अलवला वलबरा, दोस्ती और दुश्मनी, याद रखिए ये अकीदे का हिस्सा, आज हम तो इसको बिल्कुल भुला चुके हैं ना, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। तो दोस्ती का मेयार रिश्ता ईमान को बनाओ, ये एक अजीब सा रिश्ता है जो सहाबा के बीच में भी था और अल्लाह के नबी के साथ भी इनका ताल्लुक था। इन अल्लज़ीना आमनु वहाजरु वजाहदु बिअमवालिहिम वअन्फुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और उन्होंने अपनी जानों और मालों के साथ जिहाद किया अल्लाह के रस्ते में, एक सूरत। यहाँ तक कौन लोग हैं, सहाबा कराम मुहाजरीन थे जो मक्का से आने वाले। फिर वल्लज़ीना आवौ वनसरू, और वो लोग जिन्होंने उनको जगह दी और मदद की, ये हैं सारे मदीना। उलाइका बादुहुम औलिया उबाद, ये तो बाज के औलिया हैं। फिर तीसरी कैटेगरी देखिएगा, वल्लज़ीना आमनु वलम युहाजिरू, वो लोग जो ईमान तो ले आए लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, यानी कुछ बेनिफिट्स थे अपने वो नहीं छोड़ रहे, घर सबको प्यारा होता है, मक्का में उनकी जायदादें थी, हुक्म आ चुका था हिजरत का लेकिन नहीं की। मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शय, आपका इनके साथ कोई विलायत का ताल्लुक नहीं, अब आप इनको दिली दोस्त न बनाएं, दिल के खाने से इनको निकाल कर बाहर रख दीजिए। हत्ता युहाजिरू, जब तक ये हिजरत न करे, याद रखिए हिजरत वो क्राइटीरियन है जो आपके ईमान और निफाक के फ़र्क को बताता है। आज भी आप इस्लाम के लिए क्या छोड़ सकते हैं, इसी से आपका ईमान पता चलेगा। हाँ लेकिन ठीक है, मुसलमान तो ये थे, वही स्तंसरुकुम फिर दीनी, कभी आप तुमसे दीन के मामले में मदद तलब करे, फालईकुमुन नसरु, फिर इनकी मदद कर दिया करो। मुराद क्या है, हर एक के दर्जे मुख्तलिफ हैं। हाँ लेकिन अगर इन कौम के और तुम्हारे बीच में कोई वादा हो चुका था मीसाक, जैसे सुलह हुदैबिया में आगे जाके हुआ, तो फिर उसके बारे में ज़रा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ को जानता भी है और देखता भी है। और आगे फिर अल्लाह ने जैसे ईमान वालों को ईमान वालों से मोहब्बत होती है, वल्लज़ीना कफरू बादुहुम औलिया बाद, कुफ्र मिल्ल वाहद, मुसलमान मुसलमान का भाई है तो एक काफिर दूसरे गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम का ही भाई होगा, मुसलमानों का नहीं होगा। और फरमाए ला तफलुहु तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन कबीर। मुराद है कि अगर तुमने अल्लाह ताला की इन हिदायत पे, इन डिवाइन गाइडेंस पे अमल ना किया, तो फिर फितने होंगे और फसाद भी होंगे। दोबारा फिर मुसलमानों की बात है, और जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, और वो जिन्होंने जगह दी और मदद की, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। दो लफ्ज़ आप लिख लीजिए, या तो मुहाजिर बनिए या अंसार बनिए, ये दो नहीं है ना, तो फिर निफाक है। यानी या मोमिन मुहाजिर होता है, या अंसार होता है, या मुनाफिक होता है। इसीलिए इधर फरमा दिया कि जो लोग इनके बाद ईमान ला के हिजरत करते हैं और जिहाद करते हैं, वो भी इन्हीं में से हैं। तो पता क्या चला कि सच्चे मोमिनों की कुछ सिफात हैं इधर। नंबर एक, अल्लाह के नबी पर ईमान लाएं, फिर आपके साथ हिजरत करें, फिर अल्लाह की राह में जिहाद करें, और फिर जिहाद करने वालों की मदद करें। ये है वो खूबसूरत पैगाम जिस पे सूरत अनफाल पूरी होती है। कितना प्यारा है वो कलाम जिसको पढ़कर हमें अपना ईमान बहुत फीका सा लगता है। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने ऊपर लेकर इस सारी बातों को सोचें कि सहाबाए कराम की इतनी गवाहियाँ कुरान में हैं, क्या मेरी और आपकी भी कोई गवाही है? अब यहाँ पे चूंकि सूरत पूरी हुई, तो थोड़ा सा चंद जुमलों में आपको रब दे दूँ। सूरह अनफाल पूरी की पूरी आपने पढ़ ली, आपको एक दफ़ा भी लफ्ज़ मुनाफिक या निफाक का रवैया नहीं दिखा। नबी सल्लम की जितनी जंगें थी, उसमें पहली जंग गज़वाए बदर थी, सच्चे और मुखलिस सहाबा के ज़रिए लड़ी गई, और अल्लाह ने उसमें बेहतरीन मदद की। जो असबाब की कमी थी, अल्लाह ने वो फरिश्तों और अपनी मदद से की पूरी। इसके बाद अब हम शुरू करने लगे सूरह तौबा, यानी पीछे वो पूरी हुई थी ना, तो अब इसकी 75 आयात आपको इसमें दिखेंगी। ये क्या है, गज़वे तबूक से मुतल्लिक, यानी ये सूरत भी मुख्तलिफ पेराए में नाजिल हुई थी, लेकिन इसका एक बुनियादी हिस्सा जो है वो गज़वे तबूक तक हुआ। तो तबूक क्या थी, आखिरी जंग नबी की ज़िंदगी की। बदर से तबूक तक जितनी जंगें लड़ी गईं, उसमें एक फ़र्क नोट कर लीजिए कि तबूक आखिरी दौर की जंग थी, और भी लोग इस्लाम में आ चुके थे, तो यहाँ अब निफाक का कीड़ा पैदा हो गया। इसलिए सूरत तौबा में निफाक की बहुत बात है, और आज इस सूरत से लोग बड़े नालां हैं। इसको सिलेबस से निकाल दिया, इसको अब कुरान से भी निकाल दो, और आप देखेंगे कि ये सूरत बिल्कुल डायरेक्ट शुरू हो रही है। इसके और अनफाल सूरत के बीच में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, क्योंकि मुशरिकीन अरब के लिए एलाने बेजारी है, और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह के नबी ने नहीं लिखी, नहीं पढ़ी, नहीं बताई, तो हम नहीं पढ़ सकते, नहीं बता सकते। इस सूरत में माहदे भी टूट रहे हैं और बहुत कुछ है। टाइम बाउंड सूरह है, मुशरिकीन अरब के लिए लाने बेजारी है। आयत 1 से 5 तक, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बेजारी है उन लोगों से जिनसे तुम्हारे अहद हुए मुशरिकीन में से। बस सैर करो, घूमो फिरो 4 महीने तक ज़मीन में, और जान लो कि बेशक तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो, और अल्लाह रुस्वा करने वाला कुफ्फार को। और पुकारना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को यौम हज अकबर में, क्या कि अल्लाह बेजार है मुशरिकीन से और उसका रसूल भी। यहाँ अगर आप रवा रवी में इन्नल्लाह के लफ्ज़ को थोड़ा सा बदल देंगे तो बात बदल जाएगी। मुराद चाहिए कि कुरान को गौर से और समझ के पढ़ने की ज़रूरत होती है। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है, फिर अगर तुम फिर जाते हो तो जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो, اور کفار کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، ہاں مگر وہ لوگ جن سے تمہارے عہد ہوئے مشرکین میں سے، پھر نہیں انہوں نے کچھ بھی کمی کی اس میں کچھ، اور نہ تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی، پس ان کے عہد ان کی مدت تک پورے کرو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو۔ پھر جب یہ مہینے حرمت کے پورے ہو جائیں، یعنی مہلت کے 4 مہینے، تو پھر کفار کو جہاں ان کو پکڑو ان کو قتل کرو اور گھراؤ کرو ان کا، اور ان کے رستوں میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن پھر بھی فائن تابوا اقاموا الصلاۃ، وہ توبہ کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں، پھر نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور الرحیم۔ اتنی خوبصورت یہ آیات ہے۔